Welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today we'll also be taking calls from you on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But do remember that we don't address company-specific queries. You can call us on 2331-4444 and 2342-1050. I am Vaibhav Jyotsna Srivastav and with me is my co-anchor in Hindi, Nikhil Kumar.
नमस्कार. मार्केट मंत्र कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है. हम लेकर आए आपके लिए शेयर बाजार से जुड़ी खबरें और व्यापार जगत की हलचलों के बारे में जानकारी. आज सोमवार है और आप अपनी आर्थिक जिज्ञासाओं के समाधान के लिए हमें फोन कर सकते हैं. हमारे विशेषज्ञ आपके प्रश्नों के उत्तर देंगे. आप हमें 2331-4444 और दूसरे नंबर 2342-1050 पर कॉल कर सकते हैं. दिल्ली के बाहर के श्रोता 011 लगाना ना भूलें और श्रोताओं आपके प्रश्नों का उत्तर देने और आर्थिक खबरों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ अमन अग्रवाल. अमन जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है.
नमस्कार.
और सबसे पहले हेडलाइंस के साथ में वैभव.
यस, वी बिगिन विद द हेडलाइंस. पीएम टू रिलीज 17th इंस्टॉलमेंट ऑफ पीएम किसान स्कीम टुमारो एट वाराणसी. More than 9 crore farmers will receive over 20,000 crore rupees. Major Asian indices end in red today. European markets show mixed performance and oil prices were neat to flat today after US consumer sentiment falls to a 7-month low in June. Brent crude and WTI down by 0.1%.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वाराणसी में पीएम किसान योजना की 17वीं किस्त जारी करेंगे. इसमें 9 करोड़ से अधिक किसानों को 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का लाभ मिलेगा. एशियाई बाजार आज लाल निशान के साथ बंद हुए. यूरोपीय बाजारों का मिला जुला रुख रहा और अमरीका में जून महीने में उपभोक्ता भाव के साथ महीने के निचले स्तर पर रहने के बाद आज तेल की कीमतें सामान्य से स्थिर रही. ब्रेंट कच्चा तेल और वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड वायदा मूल्य में 0.1% की गिरावट. और आज की पहली खबर पर आगे बढ़ते हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पीएम किसान योजना की 17वीं किस्त जारी करेंगे जिसमें 9.26 करोड़ से अधिक किसानों को 20,000 करोड़ रुपए से अधिक का लाभ मिलेगा. इसके अलावा प्रधानमंत्री कृषि सखियों के रूप में प्रशिक्षित 30,000 से अधिक स्वयं सहायता समूहों को पैरा एक्सटेंशन वर्कर के रूप में कार्य करने के लिए प्रमाण पत्र भी वितरित करेंगे. 50 चयनित कृषि विकास केन्द्रों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं जिसमें बड़ी संख्या में किसान शामिल होंगे. इन केन्द्रों पर कई केन्द्रीय मंत्री होंगे और किसानों से बातचीत करेंगे. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जिसे पीएम किसान भी कहते हैं, योजना 24 फरवरी 2019 को शुरू की गई थी जो मानदंडों के अधीन सभी भूमिधारक किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करती है. प्रत्यक्ष लाभ अंतरण मोड के माध्यम से देशभर के किसानों के परिवारों के बैंक खातों में हर चार महीने में तीन बराबर किस्तों में 6,000 रूपये प्रतिवर्ष का वित्तीय लाभ भेजा जाता है. और इस बीच दिल्ली से योगेश शर्मा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर. योगेश जी, कार्यक्रम में स्वागत है, आपका प्रश्न पूछिए.
जी नमस्कार आप सभी को. सर, मेरा सवाल ये है कि एक रिटेल निवेशक के लिए अगर उसके पास लिक्विड फंड और डेट फंड यानी शॉर्ट टर्म डेट फंड है तो पोर्टफोलियो में फिक्स डिपॉजिट का क्या कोई अहमियत रहती है उसके बाद भी, और क्या लिक्विड फंड होने के बाद एफडी का कोई औचित्य रह जाता है आज की डेट में?
देखिए जी, ऐसा है, एफडी का जो पर्पस होता है वो बिल्कुल अलग होता है. उसका पर्पस आपको एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करना होता है और सेंस ऑफ सिक्योरिटी कि कल को मार्केट से में पैसा गिर जाए, कुछ हो जाए, तो वो नहीं गिरेगा. जो एफडी का पर्पस ये नहीं होता है कि आपको मुनाफा दे, क्योंकि जो एफडी पे रेट्स मिल रहे होते हैं वो इन्फ्लेशन रेट से अगर आप देखें कोई ज्यादा आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा होता, वो बेसिकली इन्फ्लेशन को ही कवर कर रहे होते हैं. तो इसलिए ये सोचें कि मेरे को बहुत ज्यादा कुछ मिल सकेगा एफडी से, नहीं मिलता है. बट एक सिक्योरिटी मिलती है कि अगर मेरे पास 1,00,000 रुपये है ये, तो उसके 1,00,000 रुपये में मैं क्या पैसा खरीद सकता हूं, तो जो मेरे को पैसा मिलेगा उसमें मैं उतना ही सामान बाद में भी खरीद सकूंगा, चाहे वो 6 महीने बाद हो, 1 साल बाद हो, 10 साल बाद हो. तो यही सेंस ऑफ सिक्योरिटी, और उसकी जो लिक्विडिटी है वो नेचुरली आपने जो भी एफडी कराई है इमीडिएटली आप तोड़ के आपको पैसा मिल सकता है। जो लिक्विड फंड है उसके अंदर फिर भी आपको मार्केट से ऑपरेट करना होगा, वो जो आपने बॉन्ड्स देखे या कुछ भी ले रखा है, और उसमें इमीडिएटली आप ना कर पाए, लॉस दिखाई दे रहा हो इक्विटीज के अंदर या किसी और चीज में, तो फिर वो आप इमीडिएटली उसको लिक्विड कन्वर्ट करके, अगर आपको इतनी ही लिक्विडिटी रखनी है तो आप गोल्ड की फॉर्म में भी रख सकते हैं, बिकॉज गोल्ड में भी रेट ऑफ रिटर्न अगर देखा जाए ओवर द स्पैन ऑफ अबाउट 25-30 ईयर्स उतना ही मिल पाता है जितना फिक्स डिपॉजिट से मिल पाता है।
एंड वी हैव आवर नेक्स्ट कॉलर ऑनलाइन, वी हैव कुश फ्रॉम रायगढ़, वेलकम टू द प्रोग्राम, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन।
जी गुड इवनिंग सर, अग्रवाल सर को मेरा नमस्कार।
नमस्कार
सर, मेरा दो सवाल है। पहला सवाल ये है कि लोन लेना कैसे ठीक रहेगा, क्योंकि कई बार हम लोग ऋण जाल में फंस जाते हैं। और सर मेरा दूसरा सवाल ये है कि एसेट और लाइबिलिटी को कैसे पहचाने कि कौन सा मेरे लिए एसेट है और कौन सी लाइबिलिटी है।
बहुत अच्छी बात आपने कही। पहली बात, जो लोन है वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का लोन ले रहे हैं। देखिए, जो लोन होता है वो अलग अलग कैटेगरीज का होता है, घर के लिए है, गाड़ी के लिए है, एजुकेशन के लिए है, पर्सनल लोन है, इनकी दरें भी वो इसी तरीके से अलग अलग है। कुछ क्षेत्रों के अंदर कुछ लोन की कैटेगरीज बनाई गई हैं, जैसे कुछ बैंकों को और एनबीएफसीज को हाउसिंग लोन के लिए स्पेशल रेट्स की प्रोविजंस दिए गए हैं। इसी तरीके से जो अलग अलग सेक्टर्स हैं, ऑटोमोबाइल्स हैं या कुछ और हैं, उनमें भी वो स्कीम्स आते हैं। तो मेरे विचार में एक चीज ये देखना जरूरी है कि आप किस सेक्टर में अप्लाई कर रहे हैं। दूसरा ये देखना और जरूरी है कि उसमें जो फाइन प्रिंट्स हैं कि कितना वो परसेंट आपकी प्रोसेसिंग एप्लीकेशन लेंगे, जब प्रोसेस हो जाएगा तो कितना परसेंट रहेगा, अगर उसको चेंज ओवर कर सकते हैं नहीं कर सकते, प्री पेमेंट लोन की अलाउड है या नहीं है। देखिए, पहले प्री पेमेंट अलाउड नहीं होती थी एक समय पे, उसके बाद जो है फिर बैंकों ने प्री पेमेंट, जब प्रॉब्लम आई 2007-08 में, उसके बाद से फिर प्री पेमेंट अलाउ कर दी। अभी फिर दोबारा क्योंकि सिचुएशन स्थिर है तो इसलिए कुछ बैंकों ने लिमिटेशन लगा दी कि 1 साल तक 2 साल तक आप प्री पेमेंट नहीं कर सकते। तो इस टाइप के जो राइडर्स हैं वो समझने जरूरी है, जो कोई भी आप लोन लेते हैं कि वो राइडर क्या रहता है, और वो राइडर समझ के फिर आप किसी भी बैंक से, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले सकते हैं। एसेट और लायबिलिटी जो होता है, देखिए कंपनी की बैलेंस शीट में अलग चीज होती है, आपकी चीज में अलग होता है। एसेट का सिंपल मतलब है कि जो आपकी धर है, जो आपका आपके पास है एज अ रिसोर्स, तो और लायबिलिटी वो है जो आपको चुकाना है किसी को। जब हम कंपनी की बात करते हैं तो कंपनी के लिए जो हम इक्विटी देते हैं वो ऑटोमेटिकली जो है उसकी लायबिलिटी होती है, बिकॉज वो पैसा उस इक्विटी होल्डर को देना है जबकि ओनर का पैसा है। बट क्योंकि इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी होती है कंपनी की, इसलिए वो अलग हो जाता है। पर हम आप अगर इंडिविजुअल की बात करें तो जो भी चीजें आपको आगे जाके आप स्थिर रख रहे हैं, अपने पास रख रहे हैं, जिससे आपको कभी रेवेन्यू गेन हो सकता है, करें ना करें वो अलग चीज है, वो आपके एसेट बन जाती है। लायबिलिटी जो भी आपको चुकाना है, किसी को कर देना है, पैसा देना है, कुछ पैसा कहीं से उठाया, वो सारी लायबिलिटी हो जाती है।
कोलकाता से अतानु शाह हमारे साथ हैं। अतानु जी, आपका प्रश्न क्या है?
गुड इवनिंग। गुड इवनिंग।
गुड इवनिंग
अमन जी।
नमस्कार।
माय क्वेश्चन इज द व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम फर्स्ट क्वार्टर, व्हाट डू वी एक्सपेक्ट फ्रॉम आवर फर्स्ट क्वार्टर फाइनेंशियल, एंड सेकंड वन what the relation or what that FII and FDI inside our Indian economy?
देखिए जी, जहां तक FDI एंड FII की बात है, FDIs और FIIs में थोड़ा सा गिरावट हमें पिछले साल, उससे पिछले साल के अंदर अगर हम पिछले साल देखें तो 2023-24 में करीबन $45 बिलियन के करीब आया है। उसे पिछले साल में अगर हम देखें तो $48 बिलियन के करीब आया था इक्विटी के फॉर्म में, तो कुछ थोड़ा गिरावट देखने को मिला है। बट ये कहें कि बहुत ज्यादा गिरावट है कुछ है वो नहीं है, बिकॉज जो टर्म्स है अगर हम पोर्टफोलियो देखें तो पोर्टफोलियो में बढ़ावट देखने को मिली है, तो इसलिए कहीं घटावट कहीं बढ़ावट हो रही है। पर ओवरऑल अगर हम देखा जाए दुनिया की जो स्तर है, जिस तरीके से कंडीशन मार्केट्स में, यूरोप में, अमेरिका में, सब जगह चल रही है, उसमें देखा जाए इंडिया में एफडीआई फ्लो बहुत एक पॉजिटिव फैक्टर देखने को मिल रहा है। जहां तक एफआईआई का इन्वेस्टमेंट का बात है, पिछले 1-1.5 महीने में कुछ उछाल देखने को मिला है, कुछ गिरावट भी हुई है, विड्रॉल्स भी हुए हैं, बट नेट रिजल्ट अभी भी पॉजिटिव ही देखने को मिल रहा है उसमें। जहां तक आपने बात की थी जो पहला
प्रश्न था,
फर्स्ट क्वार्टर जो इकोनॉमिक की परफॉर्मेंस की बात है, देखिए फर्स्ट क्वार्टर के अंदर क्योंकि अभी इलेक्शन ईयर इलेक्शन रहे थे तो इसलिए खर्चा काफी होता है, और इस वजह से जो कंजम्पशन है वो भी बढ़ती है लोगों की। चाहे कोई भी सरकार कितना भी पैसा कंट्रोल करने की कोशिश कर ले, कुछ ना कुछ खर्चा कोई ना कोई तरीके से हो ही जाता है, तो इसलिए कंजम्पशन बेस पे इकोनॉमी ग्रोथ करती है। बट क्योंकि कोई मेजर प्रोजेक्ट्स आउटले नहीं होते हैं, देखिए जो भी कोई इकोनॉमी ग्रो करती है, जब हम प्रोजेक्शंस की बात करते हैं, जीडीपी ग्रोथ की बात करते हैं, तो तब करते हैं जब प्रोजेक्ट्स ले आउट होते हैं, जब बड़े बड़े मेजर खर्चे, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, डिफेंस में हो, और चीजों में हो, वो किए जाए। पर क्योंकि पहले क्वार्टर में इलेक्शन की वजह से वो नहीं हुए हैं, तो वो रिजल्ट हमें इतने अच्छे देखने को नहीं मिलते हैं, बट कंजम्पशन लेवल्स हमें देखने को अच्छे मिल पाते हैं। तो एक मिक्स्ड रिएक्शन रहता है, और इस क्वार्टर में मेरे ख्याल से मिक्स्ड रहेगा। बहुत ज्यादा हमें उम्मीद नहीं करनी चाहिए पहले क्वार्टर से, इनफैक्ट सेकेंड क्वार्टर में बहुत अच्छा देखने को मिलेगा।
एंड वी हैव आवर नेक्स्ट कॉलर ऑन द लाइन, दिस इज प्रकाश जी फ्रॉम दिल्ली। प्रकाश, वेलकम टू द शो, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन।
हाँ जी, मार्केट मंत्रा टीम को नमस्कार।
नमस्कार
सर, मैं एक मेरा सवाल ये है कि इनकम टैक्स में मेरा एनुअल इन्फॉर्मेशन सर्वे में देखा है और 26 एएस दोनों में थोड़ा फर्क है, तो उसमें कौन सी किसको सही मानूंगा, जो एक्चुअली मेरा है मैं उसी को रिटर्न में भरूं?
ये देखिए जी, ऐसा है जहां तक आप रिटर्न बना रहे हैं उसमें 26 एएस से आप लेके चलें, पर जो ओवरऑल एसेट होती हैं उसमें बहुत सारी चीजें और एडिशन में है जो 26 एएस में नहीं होती हैं, तो इस वजह से आपको एक्चुअल में कोई फर्क नजर नहीं आएगा, बिकॉज दोनों ही एक ही डेटाबेस से निकल के आ रही होती हैं, तो डिफरेंसेस नहीं हो सकते हैं। बट ये जरूर होता है कि कुछ चीजें जो 26 एएस में नजर नहीं आती हैं, जैसे आपके कुछ बॉन्ड्स होंगे, फिक्स डिपॉजिट्स होंगे, जो अभी कोई मैच्योर नहीं हो रहा, उसमें कुछ रिटर्न नहीं मिला, लॉन्ग टर्म बॉन्ड होते हैं आरबीआई टाइप के, तो उसमें फिर वो एसेट्स के अंदर आ जाएंगे पर उसमें नहीं आएंगे, तो इसलिए दोनों ही स्टेटमेंट्स ठीक है। बट जो आपको इनकम टैक्स के रिटर्न के पर्सपेक्टिव से, मेरे विचार में 26 एएस को देखना चाहिए, और अगर आप काफी बड़े टैक्स पेयर हैं तो मेरे विचार में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को कंसल्ट करें।
भोपाल से अगले श्रोता हैं शंकर, वो अपना प्रश्न पूछना चाहते हैं। शंकर जी, प्रश्न पूछिए। शंकर जी, आप हमें सुन पा रहे हैं?
हेलो
जी, प्रश्न पूछिए आपका।
हम बताएं प्लीज।
सर, मेरा सवाल है, ये सरकार जो अभी आई है वो सपोर्ट के साथ आई है, अगर इस सपोर्ट को अच्छे टर्म में देखा जाए तो द सपोर्टिंग पार्टीज आर क्वाइट रिफॉर्मेटिव, तो कैन वी एक्सपेक्ट एंड व्हाट रिफॉर्म्स कुड बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम दिस गवर्नमेंट इन दिस टेन्योर ऑफ 5 ईयर्स? थैंक यू।
थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। मेरे विचार में मेजर रिफॉर्म्स अगले 3-4 साल में आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसे हमें कश्मीर का झटका देखने को मिला जो हिंदुस्तान काफी समय से सस्टेन करने की कोशिश कर रहा था। इसी तरीके से मेरे विचार में मेजर रिफॉर्म्स ये सरकार अब लेके आएगी। वो रीजन ये है कि पिछले 2 टर्म्स से जिस तरीके से ये बढ़ोतरी देख पाई है, रिफॉर्म्स का इफेक्ट देख पाई है, लोगों तक ग्राउंड लेवल तक चीजों को पहुंचा पाई है, उसको उससे जो इनको स्ट्रेंथ मिल रही है, इनको कॉन्फिडेंस मिल रहा है, वो कॉन्फिडेंस की वजह से कुछ और मेजर रिफॉर्म्स हमें देखने को मिलेंगे और सुधार ही देखने को मिलेगा। ग्रोथ कंपोनेंट में जो इंटरनेशनल मार्केट्स का इंडिया की तरफ रुझान रहा है और इंटरनेशनल एजेंसीज का या डिप्लोमेसी का, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी का रहा है, वो अभी तक बहुत पॉजिटिव रहा है। आगे भी जब वो लोग सब मंत्रालय लेंगे तो हमें देखने को मिलेगा कितनी हमें बढ़ोतरी मिल सकती है और एक आम आदमी को कितनी राहत मिल सकती है।
एंड वी हैव गोपाल फ्रॉम मुंबई। गोपाल, वेलकम टू द शो, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन।
मार्केट मंत्री को नमस्कार।
नमस्कार,
दो सवाल है। पहला सवाल ये है कि सर, ये जो प्राइस जो आगे पीछे होती है, इनका कोई ऑपरेटर होता है कि सर ये इनका कोई निगरानी करने वाला या इसका कोई देखभाल करने वाला कोई बता सकते हैं? क्योंकि सर ये कभी कभी कोई स्टॉक 500 वाला गिर गिर के 20 रुपए तक आ जाता है।
मैं समझ गया आपकी बात। दूसरा प्रश्न क्या होगा आपका?
स्टॉक पड़ा है 500 रुपए का, जो आज सर वो 20 रुपए पे अटका पड़ा है, उसके आगे जाने का नाम ही नहीं ले रहा, तो समझ में नहीं आ रहा क्या करूं।
बिल्कुल ठीक है।
दूसरा सवाल ये है कि सर, मेरे पास 2008 में जब मार्केट क्रैश हुआ था तो मेरे 2 शेयर डीलिस्टेड हो गए, उसके बाद तो अभी तक उसका कोई अच्छा पता नहीं, तो उसको मैं क्या करूं, मेरे को थोड़ा बता सकते हैं कुछ?
हाँ, पहली चीज तो ये है कि जो आप मार्केट प्राइसिंग की बात कर रहे हैं, शेयर्स की प्राइसिंग हो या डेट की प्राइसिंग होती है, जैसे हम मार्केट में जाके सेब, प्याज, सब्जी खरीदते हैं, तो वो जो बेचने वाला है वो देखता है कितना सामान पड़ा है, कितनी डिमांड आ रही है, कितने लोग खरीदने के लिए आ रहे हैं, उससे उसका रेट बढ़ भी जाता है, घट भी जाता है। उसको लगता है कि मेरा माल पुराना हो गया, यहां पे तो पुराने होने का चक्कर नहीं है क्योंकि वेजिटेबल्स नहीं है, ये खराब नहीं हो सकती हैं। बट क्योंकि जो मार्केट के अंदर लोगों का रुझान होता है एक पर्टिकुलर शेयर के लिए, एड बॉन्ड के लिए, वो जैसे जैसे बढ़ता जाता है उसकी प्राइसेस बढ़ती रहती है, और जैसे जैसे घटता जाता है वो घटती रहती है। पहले ये मैनुअली कैलकुलेट किया जाता था आज से 20 साल पहले, अब ये सब कंप्यूटराइज होता है, तो जैसे जैसे ट्रेड आती रहती है वैसे वैसे वो सेटलमेंट करते रहते हैं, इसीलिए हम T+1 सेटलमेंट पे जा पाए हैं, और इनफैक्ट अब वो T+0 सेटलमेंट की बात कर रहे हैं कि ज्यादातर एक्सचेंजेस में करेंगे, मतलब सेम डे सेटल करके आपके अकाउंट में एक्चुअली आ जाएगा। तो इसलिए ये कोई पर ऑब्जर्वर जो होते हैं, एक मार्केट ऑपरेटर्स जो कंट्रोल करते हैं, देखते हैं कि किसी में बहुत ज्यादा तेजी देखी गई तो फिर वो उसको स्टॉप करेंगे और उसको स्टॉप करके ट्रेडिंग उसके अंदर फिर पता करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है कि एक शेयर एक परसेंटेज से ज्यादा ग्रो कर रहा है या एक परसेंटेज से ज्यादा फॉल कर रहा है, ताकि इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो ये जरूर किया जाता है इसके अंदर।
उन्होंने ये भी पूछा था कि उनके दो शेयर डीलिस्ट हो गए।
हाँ, जो डीलिस्ट हो गए हैं उनके लिए आप ओटीसी मार्केट्स होती हैं, उनको भी देख सकते हैं आप, और कई बार ओटीसी मार्केट्स में लिस्टेड हो जाते हैं, वहां पे कर सकते हैं। नहीं तो आपको उन कंपनीज को ही अप्रोच करना पड़ेगा और उनसे अगर उनका कोई बाय बैक का ऑप्शन आता है या कुछ और चीजें आती हैं वहीं पर जाके आप कर सकते हैं, नहीं तो और कोई ऑप्शन रहता नहीं है उसमें।
मुंबई से अंसारी है अगले श्रोता। हेलो अंसारी जी, आपका प्रश्न पूछिए।
हेलो सर।
हेलो।
हाँ, पहले जो है आप लोग गोल्ड का जो है करंट रेट बताते थे डेली का, लेकिन आजकल वादा कारोबार में रेट बताते हैं, तो उससे बात समझ में नहीं आती है कि कब का है ये रेट।
देखिए जी, जो गोल्ड का रेट पहले बताते थे वो जो गोल्ड प्राइसेस चल रही होती थी डेली, जो वो भी हमारे पास जो हिंदुस्तान में बॉम्बे से आती थी, वैसे अगर हम देखें तो लंदन स्टॉक एक्सचेंज से प्राइसेस आती हैं, उसको रुपए में कन्वर्ट करके फिर पाउंड से कन्वर्ट करके रुपए में फिर बताया जाता था, पर एक बॉम्बे से ज्यादातर हमारी ट्रेडिंग से आती थी वहां से, बिकॉज ट्रेडिंग थोड़ी बहुत जो गोल्ड में होती थी ओटीसी एक्सचेंजेस पे वहीं पे होती थी। अब क्योंकि कमोडिटी एक्सचेंजेस बन गए हैं और वहां पे कमोडिटी प्राइसिंग आती है तो उस प्राइसिंग को लेकर चलते हैं, या फिर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे भी गोल्ड की इंडेक्स है उसको लेकर चलते हैं, उसके मापदंड को लेकर चलते हैं, इसलिए वो प्राइसेस अब बताई जाती है।
एंड वी हैव अ नेक्स्ट कॉलर जितेंद्र कॉलिंग फ्रॉम जयपुर। जितेंद्र जी, स्वागत है आपका शो में, अपना सवाल पूछिए।
हाँ धन्यवाद सर। जैसे आने वाले दो चार महीने में आर्थिक या व्यापारिक जगत में कुछ खबर, कुछ नया कुछ होने वाला है, अगर आपको जानकारी है तो बताएं थोड़ा सा आने वाले दो चार महीने में। जैसे एक एग्जांपल है कि बीमा सुगम एक प्लेटफॉर्म लॉन्च हो रहा है, तो इस तरह का कोई और भी समाचार हो तो बताएं।
देखिए जी, हम कोई अटकलें लगा के या किसी को हेजिंग करके ऐसे सुझाव या लुभावने चीजें नहीं बताना चाहते हैं, पर मैं दो तीन चीजें जरूर कहूंगा कि हिंदुस्तान का जो स्तर है वो बढ़ता जा रहा है, चाहे वो डिफेंस में हो, चाहे वो एग्रीकल्चर में हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग में हो, मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ा कम है, बैंकिंग के अंदर हो, बैंकिंग में बड़े अच्छे रिजल्ट्स रहे हैं, तो इसलिए काफी सारे सेक्टर्स, फार्मास्यूटिकल्स हो, ये सारे सेक्टर्स बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, तो इसलिए चीजें आगे बढ़ोतरी की तरफ, पॉजिटिव साइड की तरफ जा रही हैं। और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट सिर्फ निवेश करके मैन्युफैक्चर करने के लिए नहीं, हिंदुस्तान को एक मार्केट की तरह भी देखता है कि उनका जो उत्पाद बनाएंगे वो यहां पे बेच सकें, तो और इस समय परचेजिंग पावर जो लोगों की है, खरीदने की क्षमता जिसे हम कहते हैं, वो भी काफी हद तक पिछले तीन चार साल में बढ़ गई है, जबकि दुनिया भर में वो कम होती जा रही है बिकॉज कोरोना काल के बाद उनके बड़े प्रॉब्लम हुई, हिन्दुस्तान में उल्टा वो बढ़ती गई है, बिकॉज हिन्दुस्तान में सरकार ने काफी अच्छी तरीके से कोरोना काल के बाद मनी सप्लाई को कंट्रोल में करके रखा, रिजर्व बैंक ने और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस दोनों ने मिलकर, तो इसलिए जो हमारी क्षमता है वो खरीदने की अच्छी हुई है, तो इसलिए मेरे विचार में सारे सेक्टर्स अच्छा परफॉर्म करेंगे, कोई थोड़ा ज्यादा कोई कम, पर मैं ऐसी कोई भविष्यवाणी नहीं करना चाहूंगा जिसको लेके आप जो है बहुत होपफुल हो जाएं।
और अब अगली खबर पर आगे बढ़ते हैं। एशिया के अधिकतर शेयर बाजारों में आज नकारात्मक रुख देखा गया। जापान के निक्केई सूचकांक में 1.87% की गिरावट दर्ज हुई और चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक 0.56% की सुस्ती के साथ बंद हुआ। दक्षिण कोरिया के कॉस्पी में 0.52% और हांगकांग के हेंगसेंग सूचकांक में 0.03% का नुकसान दर्ज हुआ। सिंगापुर का स्ट्रीट्स टाइम सूचकांक आज अवकाश के कारण बंद था। यूरोप के तीनों प्रमुख बाजार आज मिले जुले रुख के साथ कारोबार कर रहे थे। समाचार लिखे जाने तक फ्रांस का कैक्स 0.06% ऊपर था और जर्मनी का डेक्स 0.07% के लाभ में चल रहा था। वहीं लंदन का फुटसी 100 0.1% गिर कर कारोबार कर रहा था। मुंबई से रत्नाकर हमारे साथ में है। रत्नाकर जी, आपका सवाल क्या है?
हेलो, गुड इवनिंग सर।
गुड इवनिंग, सवाल पूछिए।
हाँ, मेरा सवाल है कि अभी जो सेंट्रल में एनडीए की मिलीजुली सरकार आई है, तो उनका जो मिलीजुली सरकार का जो फाइनेंशियल जो पॉलिसीज रहेंगे वो कुछ अलग रह सकते हैं क्या? वो एक सवाल है। और दूसरा सवाल है कि अभी ऑल टाइम हाई मार्केट है, तो आने वाले समय में कौन से सेक्टर के लिए अच्छे दिन रहेंगे, नहीं वो बताइए।
देखिए जी, अभी फुल बजट हमें देखने को मिलेगा, बिकॉज जो पहले प्रेजेंट हुआ था बजट, फाइनेंशियल बजट निर्मला सीतारमन ने किया था, वो इंटरिम बजट किया गया था, तो कुछ समय में जब हमें फुल बजट मिलेगा उससे आपको पूरी धारणाएं मिल जाएंगी कि किस तरफ ये सरकार जा रही है। मेरे विचार में पूरा रोल बैक नहीं होगा जैसे पहले कभी देखने को मिला करता था, एक एक्सटेंशन होगा जो पहले बजट था या पिछले 2-3 सालों में बजट आए हैं। फोकस थोड़ा बहुत जरूर चेंज होता है, कोई भी संगठन होता है, मिलाप होता है, तो उससे थोड़ा बहुत फोकस चेंज होता है, पर इतना मेरे विचार में ज्यादा चेंज होने की उम्मीद नहीं है। दूसरा जो प्रश्न था इनका वो था
विच ऑफ द सेक्टर्स,
हाँ
कैन सी
जो सेक्टर्स जो ग्रोथ में जो देखने को मिल रही है जो ऑलरेडी है और जो सरकार ये हो या कोई भी हो या कोई भी उसमें आए वो ज्यादा चेंज नहीं कर पकेगा, वो जैसे हैं डिफेंस, फार्मास्यूटिकल, जो इलेक्ट्रॉनिक ईवी बेस्ड ऑटोमोबाइल सेगमेंट्स हैं इसमें मेजर हमें ग्रोथ देखने को मिलेगी। उसके बाद बैंकिंग इंडस्ट्री में स्पेशली फिनटेक को लेकर जो ग्रोथ हुई थी वो दोबारा देखने को मिलेगी। कुछ करेक्शंस हमें पिछले 6 महीने में देखने को मिली है और उन करेक्शंस के बावजूद वो फिर इंस्टीट्यूशंस वापस आएंगी, बाकी भी और देखने को मिलेंगी। एग्रीकल्चर पे हमें मेरे ख्याल से काफी हमें ग्रोथ देखने को मिलेगी जो ऑलरेडी चल रहा था, बट क्योंकि अभी सरकार दोबारा बहुमत के हाथ आ गई है तो मेरे विचार में जो इनका कृषि के ऊपर फोकस पहली सरकार से पहले टर्म से रहा है वो पूरी तरह कर नहीं पा रहे थे, इस बार वो उसके अंदर थोड़ा बहुत और जोर लगाएंगे और वो बहुत जरूरी है हिंदुस्तान के लिए, क्योंकि मेरे विचार में करीबन 60-65% जनता हिंदुस्तान के अभी भी कृषि क्षेत्र में ही लगी हुई है और करीबन 72% के करीब कृषि और कृषि उद्योग में लगी हुई है मिला के दोनों को लेकर चले तो ये सेक्टर्स है जो काफी स्ट्रांग रहेंगे मेरे विचार में।
वी हैव अ नेक्स्ट कॉलर फ्रॉम दिल्ली, मिस्टर केशव। केशव, वेलकम टू द शो, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन।
नमस्कार सर, जैसे हमारे फादर की एक सीनियर सिटीजन हो गए तो उसको कुछ एफडी की मैच्योरिटी मिलने पर ये पैसा उनको कहाँ लगाना चाहिए, और दूसरा उनको सीनियर सिटीजन के लिए और क्या क्या अगर बेनिफिट वाले जहाँ पैसा लगाया जाए।
देखिए सीनियर सिटीजन्स के लिए अब उनकी उम्र का मेरे को तकाजा नहीं हो पाया सुनने में कि कितनी उम्र है उनकी, अगर तो उनकी उम्र 60-65 साल के आसपास है या 65 से 70 के बीच में भी है तो आरबीआई बॉन्ड्स एक निवेश करने का सिस्टम है, 5 साल के बैंकिंग सेक्टर में सीनियर सिटीजन्स के लिए स्पेसिफिकली बॉन्ड्स हैं वो भी आप किसी भी बैंक में जाके सरकारी बैंक में जाके आप उनको खोल सकते हैं, वो भी एक अच्छा रेवेन्यू है। उसके अलावा कुछ वो पैसा जो है छोटे बैंकों में भी लगा सकते हैं जहां पे इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिल रहे हैं, ज्यादा ना लगाएं पर थोड़ा बहुत वो जरूर लगा सकते हैं 1-3 साल के ड्यूरेशन में। ज्यादा लंबे समय के लिए पैसा मेरे विचार में नहीं लगाना चाहिए बिकॉज जो पैसा इंटरेस्ट रेट होता है वो चेंज होता रहता है, हम उसको यील्ड कर्व कहते हैं, वो यील्ड कर्व कभी अपटर्ड होती है नीचे होती है, मेरा कहने का मतलब लंबे समय में वो रेट ज्यादा हो अभी कम हो, अभी ज्यादा है लंबे समय के लिए कम है, पर वो छोटे पीरियड के अंदर अगर हम 1-1.5 साल का स्पैन लेके चले उसमें री इन्वेस्ट करें तो हमारा एवरेज रिटर्न अच्छा रहता है।
अमन जी, अभी अगर हम शेयर बाजार पे नजर डालें तो हमने ये देखा है कि एशियाई बाजारों में आज नकारात्मक रुख रहा, वहीं यूरोप के बाजारों में नकारात्मक रुख हमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही मिला जुला रुख देखने को मिला। हालांकि इंडिया में आज कारोबार नहीं हुआ लेकिन फ्राइडे की अगर हम बात करते हैं तो फ्राइडे भी मार्केट चढ़ा हुआ था, 76,993 पर बंद हुआ, 77,000 के आसपास ही हम उसे मान सकते हैं। इस बढ़त के सिलसिले को कहां तक देख पाते हैं आप?
नहीं, मेरे विचार में अभी बहुत ज्यादा चीजें नहीं सोचनी चाहिए इसके लिए बिकॉज अभी मिक्स रिएक्शंस मार्केट से आ रहे हैं। ये इसलिए आ रहे हैं क्योंकि अभी सरकार ने कोई बड़ी घोषणाएं नहीं करी हैं बनने के बाद। नॉर्मली क्या होता था कि जब भी सरकारें बनती है नहीं बनती है तो इमीडिएटली वो आके बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं, हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, तो अभी ऐसी कोई घोषणा नहीं मिली। सेकेंडली बजट भी अभी प्रेजेंट नहीं हुआ तो इस वजह से ये एक मिक्स रिएक्शन हमें अभी 1-10 दिन ऐसे ही देखने।
तो निवेशकों को कैसी अप्रोच रखनी चाहिए फिलहाल अभी?
देखिए हिन्दुस्तान एक पॉजिटिव इकोनॉमी है, यहां पर ग्रोथ ही ग्रोथ मिल रही है तो निवेशकों का पैसा डूबेगा तो उसने ही ना पहले डूबा है ना अभी, आखिर अगर वो राइट स्ट्रेटेजीज लगा रहे हैं और ठीक टाइम पे खरीद रहे हैं बेच रहे हैं जैसे पहले करते आए हैं तो मेरे विचार में उनका।
अच्छा, एक बात आपसे और मैं पूछना चाहूंगा, अभी जो हमारे श्रोता थे जिन्होंने अपने पिता के बारे में जो पूछा जो वरिष्ठ नागरिक है, तो क्या वरिष्ठ नागरिक अगर इसमें पैसा लगाना चाहते हैं, मार्केट में लगाना चाहते हैं, खासकर म्यूचुअल फंड्स में अगर लगाना चाहें तो कैसा रहेगा उनके लिए?
बिल्कुल अच्छा रहेगा। दी ओनली थिंग इज कि उनको एक चीज का ध्यान रखना जरूरी है कि मार्केट को आपको हर रोज देखना है, उसके बाद न्यूज़पेपर्स में, टेलीविजन में, ये मोबाइल को छोड़ के टेलीविजन में और न्यूज़पेपर्स में एक ऑथेंटिक सोर्स से जो इन्फॉर्मेशन आती है उसको पढ़ के समझें कि मार्केट कैसे मूव कर रही है, कहां पे करना चाहिए कहां पे नहीं करना चाहिए। अगर वो ये काम करते हैं तो अच्छा है, पर अगर ये जो गूगल पे न्यूज आती है या व्हाट्सएप पे न्यूज आती है उसके बेसिस पे करेंगे तो मेरे विचार में लॉस में रहेंगे और वो फिर उनको नेगेटिव हो जाएगा।
यानी रिटायरमेंट के बाद एक अच्छा ऑप्शन ये हो सकता है अपने आप को बिजी रखने का,
बिल्कुल
पैसा भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, बिजी भी रह सकते हैं,
बिल्कुल कर सकते हैं। और थोड़े से शुरू करें, थोड़े करके उसमें कॉन्फिडेंस आए, उसको बढ़ाएं। एकदम से ये ना कहें कि मेरे पास बहुत पैसा है तो मैं सारा का सारा लगा दूं, ऐसा ना करें, जुए की तरह ना खेलें, इसको एक अच्छे स्पोर्ट्स की तरह खेलें।
जी।
एंड मूविंग ओवर टू आवर नेक्स्ट स्टोरी, द इंडियन बैंक्स हैव बाउंस्ड बैक ओवर द लास्ट 10 ईयर्स विद अ फोरफोल्ड इंक्रीज इन प्रॉफिट्स एंड अ शार्प डिक्लाइन इन बैड लोन्स। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, बैलेंस शीट्स ऑफ इंडियन बैंक्स आर द स्ट्रॉन्गेस्ट दे हैव बीन इन ओवर अ डेकेड, and profits have rebounded sharply, quadrupling in 10 years. The report points out that non-performing loans, net NPL, which were a bane of the Indian banking sector earlier, have now declined to a decadal low, driven by better asset quality, stronger provision buffers, and an improved capital position. Deposit growth should coincide with the acceleration of loan growth, which increased from 10% to 15% on average over the previous 2 years. During financial year 21 to 22, it added, in the past year and over the last 5 years, public sector banks have done much better than private sector banks. However, the private sector banks have outpaced PSU banks in current accounts, CA deposits, and have also pared down non-deposit borrowings. The report also states that the loan growth in the sector has picked up from a decadal average of 10% to 15% of the past 2 years, driven by all segments and possibly some shifts from corporate bond substitution. Over a long period, loan growth and deposit growth have been in sync. The quality of corporate credit too has improved over the past 5 to 7 years. The report added. And we have our next caller from Faridabad, Prem Kumar Ji. Prem Kumar Ji, swagat hai aapka show mein. Apna sawal poochi.
Namaskar. Aam aadmi zyadatar bank pe paisa rakhta hai, bank pe paisa rakhne ko wahan hai FD wagera ka. Agar bank mein fraud ya bank mein doob jaye aur uska bank mein 15 lakh rupaya hai to usko kitna mil payega, aisa kabhi to hona to nahi chahiye. Agar ho jaye to बताते हैं कि 5 लाख तक ही मिले, 10 लाख तक क्या हुआ। और दूसरा सवाल इसका ये है कि हमें अपना पैसा इन्वेस्ट करना है तो हमें कहाँ इसके लिए जाना चाहिए, क्योंकि हमारी ये स्कूल है।
Before Aman sir answers the question, I would request callers to kindly switch off their radio stations. Apne radio set se thoda sa duri bana ke rakhe, unko switch off kar dein, warna wo awaaz hum tak clearly nahi pahunch paati hai. Aman sir.
Haan, dekhiye ji, aisa hai, jahan tak paisa jo aapne banks mein rakha hai, fixed deposits mein rakha hai, wo safe hai. आज तक पिछले 20 सालों के 25 साल का अगर बैंकिंग हिस्ट्री हिंदुस्तान की देखें आप, 25 साल ही लेके चलेंगे बिकॉज अभी करंट का जरूर इम्पोर्टेंट है, उसको देखे चलें तो बड़े सारे बैंक्स में प्रॉब्लम आई है मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से, किसी और वजह से उनको मर्ज कर दिया गया, बड़े बैंकों को दे दिया गया, उनको अलग अलग को जोड़ के बनाया गया, किसी का भी एक भी रुपया नुकसान में नहीं रहा है। इवन कॉपरेटिव बैंक्स में भी आपने देखा होगा कहीं बहुत न्यूज में चर्चा में आए पिछले 1.5-2 सालों के अंदर, उनमें भी कोई ऐसा घाटा नहीं हुआ कि किसी को नुकसान हुआ हो। तो पहले तो ये लेके चलें कि बैंकिंग सेफ है और उसमें कोई ऐसा घाटा नहीं होने की उम्मीद। दूसरा, जो आपने बात करी 5 लाख की, पहले वो 1 लाख हुआ करता था, इस सरकार ने उसको फोर्स करके रिजर्व बैंक को इंस्ट्रक्ट देने के लिए कहा, जो उन्होंने बैंकों को दिया कि 5 लाख तक आपका पैसा जो है सिक्योर्ड है। अब आप 5 लाख हर एक बैंक में एक खाते में है, कहने का मतलब यह है कि अगर आपके पास 5 अलग अलग खाते हैं अलग अलग जनों के नाम पे, तो वो पांचों के 5-5 लाख हो सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपने अपना खाता 5 अलग अलग बैंकों में खोल रखा है या 10 लोगों में बैंकों में खोल रखा है, तो वहां पे भी 5-5 लाख हर एक खाते में खुले होंगे। एक पैन कार्ड से जरूर लिंक्ड है पर हर एक खाते के ऊपर 5 लाख है, तो इसलिए आप वैसे आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं।
And moving over to oil, oil was steady on Monday after Chinese economic data, underscoring a bumpy recovery for the world's biggest crude importer, offset hopes for a boost to demand from the summer driving season in the Northern Hemisphere. Apart from retail sales that beat forecasts due to a holiday boost, the flurry of Chinese data on Monday was largely downbeat. The data followed a survey on Friday showing US consumer sentiment fell to a 7-month low in June. Brent futures for delivery of July were down by 0.1% at $82.54. cents a barrel, while the U.S. West Texas Intermediate WTI crude futures lost 0.1% at $78.34 per barrel.
अमन जी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए और हमसे चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद
धन्यवाद
एंड बिफोर वी क्लोज अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस पीएम टू रिलीज 17th इंस्टॉलमेंट ऑफ पीएम किसान स्कीम टुमारो एट वाराणसी मोर देन 9 क्रोर फार्मर्स विल रिसीव ओवर 20,000 क्रोर रुपीज मेजर एशियन इंडिसीज एंड इन रेड टुडे यूरोपियन मार्केट शोज मिक्स परफॉर्मेंस एंड ऑयल प्राइसेज वर नीड टू फ्लैट टुडे आफ्टर यूएस कंज्यूमर सेंटीमेंट फॉल्स टू अ 7 मंथ लो इन जून ब्रेंट क्रूड एंड डब्ल्यूटीआई डाउन बाय 0.1% एंड दैट इज इट इन दिस edition of Market Mantra. For now, Namaskar.
Namaskar. Market Mantra.